having the presence of Shri Prabhupada in such a highly elevated assembly. For the last 8 years, we have been inviting Shri Prabhupada and he has kindly accepted our invitation by coming to Houston to bless us all. I pray at the lotus feet of Shri Prabhupada to always give us blessing and seva again and again. Please excuse us if we make any mistake in our duty. In organizing this function, there have been many hands involved. Though I cannot mention all of these names, on behalf of IGVS Houston, I would like to recognize this active supporter to come and if they are here to come and take blessings from Shri Prabhupada. Mr. and Mrs. Manohar Gidwani of Banke Bihari Jiva. Mr. Padma Kanta Kambatiji, voice of Sanatan Hinduism radio station. Dr. R.K. Dingra, Rajendra Sharma Panditji at Hindu Worship Society. Dr. K.D. Upadhyayji, president of Hindu Worship Society. Thank you all. I also like to invite Kamesh Prabhu daughter. His birthday is today. She can take blessing from Shri Prabhupada.
यहाँ पर भेज दो कहाँ है माधव महाराज है आंधी करने लाओ उनको तुम यहाँ पर आ जाओ अपने पिताजी के पास ओके प्रो मंगल वाचन करो सबको दे दो सबके हाथ इन लोगों को आप सब लोग हाथों में पुष्प लेकर के जब मैं इसके ऊपर में दूंगा आशीर्वाद आप लोग भी ओम स्वस्ति नो गोविंदः स्वस्ति नो अच्युतानन्तो वासुदेवो विष्णु दधातु स्वस्ति नो नारायणो स्वस्ति नः पद्मनाभः पुरुषोत्तमो दधातु ऋषिकेशो हरि भागवतो मंगलं भवतु कल्याणं भवतु सुखी भवतु लौकिक पारलौकिक सब प्रकार मंगलं भवतु ओ सर्वोपरि कृष्ण भक्तिर भवतु
सर्वोपरि कृष्ण भक्ति भवतु
बी ऑस्पिशियस योर बर्थडे यू शुड बी हैप्पी इन दिस वर्ल्ड एंड ओ ग्लोक वृंदावन टू एंड यू विल हैव द मर्सी ऑफ ओ राधा एंड कृष्ण कंजुगल एंड हिज भक्ति शुड कम इन यू बिना भक्ति के कोई सुखी नहीं हो सकता हाँ भक्ति बिना क्यों सुखी थकते पारे ना ये जन्म भक्ति करा तो तुम्हार मंगल हो कृष्णदास एक कीर्तन करा भक्ति पीड़ना ओ उनको पूछ कहाँ गए चक्रवर्ती काके पुस्तक भी क्या है क्यों आशन क्यों आशन पहले ठीक प्रारंभ करो गुरुदेव बजा नहीं सकता बजा नहीं सकता बजाओ अरे तुम इतना बड़ा भारी है मिला करके बजा नहीं होगा तो एक बस बजा देना
बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय 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 श्री राधे गुरुदेव दया करके मुझको अपना ले Thank you. मेरे मन में समाए हो, मुझे प्राणों से प्यारे हो, मेरे मन में समाए हो, मुझे प्राणों से प्यारे हो, मुझे प्राणों से प्यारे हो, मुझे प्राणों से प्यारे मेरे माला चाहूंगी मेरे दोष भुलाए
রামচন্দ্রবাবুকে ইংরেজিতে বলতে বলবো আরো কি লাগে, তাহলে আমাদের অ্যানাউন্সমেন্টও করে দেবে একসঙ্গে কি কালকে প্রোগ্রাম কখন হবে, কে ট্রান্সলেট করবে, সামারাঙ্গি দিদি পাঁচ মিনিট, হ্যাঁ পাঁচ দশ মিনিট।
Oh,
अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वञ्चाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायैतराय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तदभक्ताय नमो। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरयायुहाम् पुत्रेति तन्मयतया तर्वोभिनेदु तं सर्वभूत मुनिमानतोऽस्मि तवैवास्मि तवैवास्मि न जीवामि तया विना इति वीक्ष्यावादि तं नयमामचरणम्। मैं सप्रथम अपने परमाराध्यतम श्रील गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद श्रीमद भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी के चरण कमल में कोटि कोटि वासष्टम दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात अपने शिक्षा गुरु ओम विष्णुपाद श्रीमद भक्ति वेदांत स्वामी महाराज के चरणों में भी दंडवत प्रणति ज्ञापन करता। हमारे प्यारे मेरे आदरणीय वैष्णव सन्यासियों ब्रह्मचारियों और हमारी बेटियों वैष्णव यथाजत अभिवादन करके मैं श्रीमद् भागवत आरंभ कर रहा हूं। भगवान श्री कृष्ण अभी पिछले द्वापर में करीब करीब 5,000 वर्ष पहले इस पृथ्वी में अवतीर्ण होकर के अपने परिकरों के साथ मथुरा वृंदावन में जन्म लिया और गोकुल में बाल्य लीला, वृंदावन नौ और नंदगांव इत्यादि में गोवर्धन में किशोर लीला करके फिर मथुरा लौटकर कंस का और उसके साथी चारुण मुष्टिक इत्यादि सबका वध किया, असुरों का भार हरण किया। तत्पश्चात द्वारका चले गए और वहां पर महाभारत युद्ध इत्यादि हुआ। तत्पश्चात और भी जो असुर पृथ्वी का भार थे, अत्याचार करने वाले थे, उन सब का विनाश कर धर्म की संस्थापना की। उनके चले जाने के कुछ ही दिन बाद कलयुग ने पृथ्वी पर प्रवेश किया। उस समय पांचों पांडव भी नहीं थे। अभिमन्यु का लड़का महाराज परीक्षित उस समय उनके बदले राज्य कर रहे थे। उसी समय कलयुग ने प्रवेश किया। कलयुग में धर्म की बड़ी हानि होती है। स्त्रियां भी धर्म को छोड़ देती हैं, पुरुष लोग भी छोड़ देते हैं, यहाँ तक कि साधु संत लोग भी जो त्यागी हैं वो लोग भी अपने धर्मों को छोड़कर विषय में फंस जाते हैं। तीर्थों का तीर्थत्व नष्ट हो जाता है, वहां पर जौनों का अधिकार हो जाता है मुसलमानों का। कृष्ण की जन्मभूमि मथुरा और अयोध्या काशी इत्यादि में मुसलमान अधिकार करके जन्म स्थान को भी अपवित्र कर देते हैं, गंगा जमुना को भी अपवित्र कर देते हैं। कलयुग में जो अधिक काल बजाने वाले डपोर संखी हैं, वही लोग साधु माने जाएंगे। इसी तरह से धर्म भ्रष्ट लोग वोट के बल पर राज्य करेंगे और इस प्रकार से जगत में अनाचार फैल जाएगा। बहुत से कम लोग भक्ति पथ पर रहेंगे। इसलिए साधु संत सब जो यथार्थ में थे वो डर गए। वे एकत्रित होकर के नैमिषारण्य में पहुंचे। उस समय नैमिषारण्य में सुखदेव गोस्वामी के शिष्य सुत गोस्वामी जी सुत गोस्वामी जी शास्त्रों का दूसरों को श्रवण कर रहे थे। उनके उपदेश उस समय में सुत गोस्वामी को उन्होंने प्रश्न किया और प्रश्न करके बोले कि आप समस्त शास्त्रों के वेत्ता हैं, जानने वाले हैं, विशेष करके आपने सुखदेव गोस्वामी से सब शास्त्रों का सार श्रीमद् भागवत श्रवण किया, उसके उपदेशों को श्रवण किया, महाभारत पुराण उपनिषद वेद सबका तात्पर्य आपको ज्ञान है, इसलिए हम लोगों का ये पूछना है कि कली काल आ गया है, उससे प्रभावित हुए बिना रहना बड़ा भारी कठिन है। कलयुग में लोगों की आयु बहुत थोड़ी रह जाती है, बहुत थोड़ी। उसमें भी तरह तरह के उपद्रव हैं। लोग विषयों में इतने फंस जाते हैं, इनको किसी चीज की धर्म इत्यादि का ज्ञान नहीं रहता, समय नहीं रहता और इतना करके भी भाग्यहीन होते हैं, बड़े भारी भाग्यहीन।
कैसे?
प्रायण अल्प आयुष सभ्य कला युग अस्मिन् युगे जना मंदा सुमंद मतयो মন্দভাগ্যা হি উপদ্রুতা। মন্দভাগ্য বালে और चाहते हैं अच्छा तो होगा बुरा, और तरह तरह के उपद्रव हैं। इसमें कलयुग में बहुत सी बातें ऐसी हैं जो लोग समझते हैं कि यही मेरा कर्तव्य है, भगवान का भजन करना, उनको जानना, ये कर्तव्य नहीं ज्ञान होता। पता है आप समस्त शास्त्रों का सार हमें बतलाइए, कलयुग से हमारी कैसे रक्षा हो सकेगी, और जयात्मा संप्रसिद्धति, और हमारी आत्मा प्रसन्न रहे। शरीर का प्रसन्नता प्रसन्नता नहीं है, शरीर की प्रसन्नता से आत्मा नहीं प्रसन्न भी हो सकता है। शरीर तो मदिरा पान से व्यभिचार से प्रसन्न हो सकता है, मांस खाने से, मछली खाने से, किंतु हम शरीर नहीं है आत्मा है, वो कैसे प्रसन्न होगी, इसमें हम वर्णन करेंगे सब। कैसे आदमी यथार्थ में सुखी रह सकता है, श्रीमद् भागवत में ही बतलाया गया है। इसलिए आप कृपा करके हमें बतलाइए कि आत्मा कैसे सुख प्रसन्न हो सकती है। सुनकर के बड़े वे प्रसन्न हुए, और इसके उत्तर में बोले जे कैसे आत्मा प्रसन्न रह सकती है। आत्मा माने मैं, शरीर नहीं, कैसे प्रसन्न रह सकती है, और उसका क्या कर्तव्य है, आप कृपा करके बतलाइए। सुनते हैं सुत गोस्वामी अपने गुरु जी का प्रणाम किया, गुरु जी को प्रणाम किया कि जन्म होते ही जो अपने घर से निकले, पिता उसके पीछे पीछे चले, हा पुत्र तुम कहां जा रहे हो। और जिनका भी यज्ञोपयन यज्ञोपनयन नहीं हुआ था, उपवीत नहीं हुआ था, जन्म का कोई संस्कार भी नहीं हुआ, जन्म लिया चल पड़े, माता का जो और सब संस्कार होता है पुत्र का, वो भी कुछ नहीं हुआ, उसी अवस्था में निकल करके चल पड़े, और व्यास जी पीछे पीछे दौड़े। और उसी समय में पेड़ों ने उत्तर दिया, कौन पुत्र, कौन पिता, कौन मैया, कौन भाई, कौन पिता, शरीर को तुम लोग समझ रहे हो, ये सब नहीं, पिता तो वही है, माता वही है, भाई बंधु वही है, जो जगत की सृष्टि करने वाले स्वयं भगवान कृष्ण है, उसी से सुख हो सकता है। ये पुत्र पुत्र क्या कर रहे हो। इसके बाद में और भी स्तुति किया और आरंभ किया, बोले तुम लोगों ने पूछा यह प्रश्न बहुत सुंदर है कि आत्मा कैसे सुप्रसन्न हो सकती है। इसके लिए वो बोले सवई पुंसान परो धर्मो जतो भक्ति रजे अहेतुक अप्रतिहता जयात्मा संप्रसिद्धति। बोले सवई पुंसान, मनुष्य मात्र, प्राणी मात्र का एकमात्र परम धर्म है क्या, जो वचन मन और सबसे अतीत प्रभु हैं, जिनको जो इंद्रियों के पकड़ के ऊपर हैं, जिनको इंद्रियां अनुभव नहीं कर सकती, वो जो प्रभु हैं, कृष्ण हैं, उनके प्रति है तुकी बिना कुछ चाहे जगत की, और निरंतर जमई तेज धारावत अविच्छिन्न गति वाली, निरंतर दिन रात जो भक्ति होती है उसी से आत्मा प्रसन्न हो सकती है। फिर से समझो, भगवान श्री कृष्ण के प्रति जो पुरुषोत्तम है, सृष्टि के मूल कारण है, स्थिति प्रलय के, उनके प्रति बिना कारण रहित कोई संसारी कामना वासना नहीं, उनके प्रति अहेतुकी बिना कारण वाली यदि भक्ति हो तो उसको कहते हैं उससे अपना सुप्रसन्न है। और कोई जगत में गति नहीं है, गति नहीं है, गति नहीं है। अब यहां पर थोड़ा सा थोड़ी सी व्याख्या आवश्यक है। भक्ति किसको कहते हैं? हम लोग जिसको साधारण रूप में भक्ति कहते हैं वो भक्ति नहीं है, तो वो क्या है? भक्ति की छाया है, भक्ति नहीं। उसी को हम थोड़ा सा डिफिनेशन के साथ में, मैं व्याख्या के साथ में बतला रहा हूं। यो तो शास्त्रों में, बहुत शास्त्रों में कहा गया है भक्ति की परिभाषा, सपरानुरक्ति ईश्वरी, ईश्वर में, भगवान में परम अनुरक्ति का होना ही भक्ति है। और भी भक्ति निर्गुण है, तन मन वचन से भगवान को प्रसन्न करना भी भक्ति है, ये बात ठीक है। किंतु चैतन्य महाप्रभु जी के परिकर श्रील रूप गोस्वामी ने बतलाया, अन्नाभिलाषिता शून्य ज्ञान कर्माजनावृतम आनुकूल्येन कृष्णानुशीलन भक्ति रुत्तमा अनुकूल्येन कृष्णानुशीलन। यह श्लोक श्रील रूप गोस्वामी ने महाप्रभु जी के कृपा से कहा। इससे ऊपर बढ़ करके पहले और आज भी इससे कोई सुंदर परिभाषा नहीं हो सकती है भक्ति। इसकी हम व्याख्या करने से आप लोग समझेंगे और वैसा ही करने की चेष्टा करेंगे। भक्ति माने होता है सेवा। भक्ति माना, भक्ति का शब्दार्थ होता है सेवा करना। वो सेवा कैसे होगी? अनुकूल रूप से कृष्ण का अनुशीलन कर। तात्पर्य क्या है? जिसे कृष्ण को प्रसन्नता हो किंतु प्रतिकूल भावना न हो और निरंतर होने वाली समस्त इंद्रियों के द्वारा, इंद्रियों का अतीत भावना के द्वारा जो कृष्ण की सेवा होती है उसको भक्ति कहते हैं। किंतु तब तक भी वह शुद्ध भक्ति नहीं है जब तक कि संसारी कामनाएं वासनाओं के लिए भगवान की सेवा की जाती है। जैसे ध्रुव जी थे, भक्ति की और भगवान का दर्शन पाया किंतु राज्य प्राप्ति के लिए किया, इसको भक्ति नहीं कहेंगे। ये भक्ति का एक तरह से शैड उच्छाया है, उनकी भक्ति नहीं है। हम इसके विषय में और भी बतलाएंगे सब, पहले डेफिनेशन को बतला करके आगे चले। जैसे भगवान को प्रसन्न करना भक्ति है, ये कहा गया। किंतु यशोदा जी की भक्ति कैसी है जो कृष्ण को का कान पकड़ करके ऐंठती हैं, पोखल में बांध देती हैं और वो परब्रह्म कृष्ण रोता है, तो कृष्ण को रुलाने को कैसे भक्ति कहेंगे? तो यह भक्ति नहीं हुई। नहीं, कृष्ण को मारने की इच्छा से नहीं कर रही, ये लड़का हमारा बिगड़ जाएगा, अभी गुल्लोगों के घर में मक्खन चुराता है और बड़ा हो जाने पर डकैत होगा ना क्या होगा, इसलिए अभी से उसको शासन कर। इसलिए जो यशोदा जी बीच बीच में शासन करते, किसी ने कह दिया यदि नारद इत्यादि ने, अरे ये परब्रह्म भगवान है, तो वो भगवान अपने घर में रहे, भगवान हमारे घर में बेटा के रूप में आया है तो हम उसको उचित शिक्षा देंगे, ये भक्ति है। और दूसरी तरफ में चारुण मुष्टि कृष्ण से युद्ध कर रहे हैं, कंस ने निमंत्रण दिया, अक्रूर जा करके और कृष्ण बलदेव को किसी प्रकार से बहाने बना करके उनको लाओ यहाँ वृंदावन में, और ब्रजमंडल में हमने मारने की चेष्टा की कोई किंतु लौटा नहीं, उतना नहीं लौटी। अगासुर बकासुर जितने भी राक्षस थे सबको भेजा उनको मारने के, किंतु फिर वो लौट करके आए भी नहीं। ये संवाद दीजिए वो क्या हुआ। इसलिए कृष्ण को वहां पर मारना बड़ा भारी कठिन है ब्रज में वृंदावन में, इसलिए उचित है कि उनको बुला लो यहाँ किले के भीतर में। हम सब जितने हैं हमारे परिकर चारण मुस्तिक और सब मिल करके और सभी लोग एक साथ में मारेंगे, नहीं तो उसको मरना बड़ा भारी कठिन। एक बार वो कंस गोकुल में गया उतना के मारने के मरने के बाद में, तो वहां पर गया जब जमुना को पार करते ही एक बुढ़िया मिली। बुढ़िया ने कहा कि बेटा तू कौन है, कहां जा रहा। उसने कहा कि मैं अपनी की बात की भेद नहीं बतलाए। वो समझ गई वो जोग माया पूर्णिमा जी थी, उसको छू दिया केवल, और छूने से वो बूढ़ी बन गई जोकरी, एकदम बूढ़ी जैसे चलते हैं वैसे बन गई। और कहा जे गोबर का कंडा बनाओ और बाध्य करके वो बनाने लगी, और जो ब्रज से आ रहे हैं सभी उसको अपने पैरों से मारते हैं। हाँ क्या हाँ, यहाँ मार रहे हैं यहाँ मार रहे हैं, कोई पैर से ठोकर मार रहा है कोई कुछ। काफी दिन हो गए और वो सोच रहा है मेरी क्या गति हुई। तो उसने प्रतिज्ञा की अब मैं ब्रज में नहीं आऊंगा कभी नहीं। इसलिए ऐसा करते ही जोग माया ने छोड़ दिया, अजय जाओ जमुना जी के उस बात में रहना ही घर मत आना। तब से कंस ये चीज उसको याद है इसलिए नहीं जाता कभी, फिर गया। इसलिए निमंत्रण दिया अक्रूर के द्वारा, अक्रूर जी उनको ले आए, आए तुम्हारे मैया को बाप को जिन्होंने तुम्हारा जन्म दिया और उसको ये मार रहे हैं, कंस मार रहा है, और तुम जीवित हो धिक्कार है तुम्हें, चलो कह करके बहाने बना करके ले आया। उस समय चारण मुष्टिक को आदेश दिया कि इसको मार डालो। उस समय में विश्व भर में बड़े लंबे चौड़े पहलवान थे दक्षिण भारत के रहने वाले। जब कृष्ण से लड़ना चाहा तो कृष्ण ने कहा हम तो अभी दूत मुंह बच्चे हैं, अभी तो 8-10 वर्ष की उम्र है, और तुमसे लड़ने के लिए तुम्हारे जैसे पहलवान होना चाहिए, हम बच्चे क्या तुमसे लड़े। पकड़ लिया, अरे तुमने किसको किसको मारा, अगासुर बकासुर, इधर आ जाओ अपने बच्चों के साथ में खूब खेलता कूदता है। पकड़ लिया तो लड़ने लगे। उसमें चारण मुष्टिक उसका जान मारने के लिए, प्राण से मारने के लिए वो घुस्से मार रहे हैं, ऐसे मार रहे हैं, और कृष्ण को बड़ा आनंद आ रहा है, बहुत दिनों के बाद में आज लड़ने का वीर रस प्राप्त हुआ, इसलिए बड़े आनंद। अच्छा ये आनंद होना भक्ति है कि नहीं, ऐसा आनंद भक्ति नहीं है। मालूम होता है जो कृष्ण प्रसन्न हो रहे हैं किंतु ये भक्ति नहीं है, क्यों, अनुकूलेन, अनुकूल रूप में सेवा नहीं है, कृष्ण की प्रीति के लिए वो नहीं लड़ रहे, उनको मारने के लिए लड़ रहे, इसलिए भक्ति ऊपर की वृत्ति नहीं है भीतर की वृत्ति। इसलिए भगवान की सेवा के लिए जो सेवा करते हैं वो है। अभी हमने मथुरा में देखा कि हजारों आदमी शंकर जी के मंदिर में भीड़ करते हैं और उसके चौखटों को दबाते हैं। मैंने पूछा जी भाई ये चौखट क्यों दबाते हो, तो शंकर जी को प्रसन्न करने के लिए कहते हैं कि हम 1 रुपये का बताशा चढ़ाएंगे, हमारी लड़की बीमार है उसकी शादी नहीं हो रही है, उस लड़की की शादी हो जाए, हमारा लड़का फेल हो रहा है वो पास हो जाए, बिजनेस ठीक नहीं चल रहा है, इसलिए ये भक्ति नहीं है। भक्ति जैसा लगने पर भी वो हजार पैर दबाए, हजार चढ़ाए, हजार कहा जी गोवर्धन जी आपको 1.25 मन का दूध चढ़ाएंगे, किस के लिए, उनको उनके लिए ना अपने लिए कर रहा, इसलिए ये सब भक्ति नहीं है।
इसलिए ऊपर से वो दिखाई दे और ना दे, भीतर से अपनी सारी इंद्रियों से, बाहरी और भीतरी, मन से, यहां तक कि आत्मा से, भावना से, भगवान की जो निरंतर सेवा होती है, भगवान को प्रसन्न करने के लिए ही ये भक्ति है। अपने मन की प्रसन्नता से जो कुछ भगवान की सेवा करते हैं वो भक्ति नहीं है। अब इसको उदाहरण देकर के समझाता हूं। महाराज दशरथ जी ने राम को वनवास दिया, उनके साथ साथ में सीता मां और लक्ष्मण जी वन में गमन किए, चित्रकूट में पधारे। इधर भरत जी को पता लगा अपने ननिहाल से आए और सुना जी हमारी मैया के कारण हमारे पिता मारा गए हैं और हमारे रामचंद्र जी जैसे भाई सीता और लक्ष्मण जी के साथ में वन में चले गए। बड़ा भारी दुख हुआ, कह के घर में गए, पूछा मैया पिताजी कहाँ है, आज मेरी अगवानी करने के लिए नहीं आए, तो वो मर गए। और भैया कहाँ है राम, वनवास में गए, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए ये मंगा था वर, ये भक्त को कितना 14 महीने का वनवास हो, 14 साल और भरत राजा हो। सुनते ही राम को बुलवाया और राम के लिए आदेश दिया और उनको वनवास के कपड़े पहनवा दिए, ऋषियों मुनियों जैसे। वन के में जाते ही महाराज दशरथ हाराम 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 कहकर के चारों ओर सिधारे। भरत जी अपनी मैया को मारने उठे, फिर सोचा जी राम अप्रसन्न हो जाएंगे, मारा तो नहीं, बोले जी आज से तुम्हारे और हमारे बीच में बेटा और मैया का कोई संबंध नहीं रहा, जीवन भर अब आप राज या राज रानी हैं, भक्त की मैया नहीं आज कह कही महारानी। और ये कह करके सारी अयोध्या के लोगों को लेकर के, वशिष्ठ को लेकर के और अंत में सब माताओं को लेकर के चित्रकूट पहुंचे। चित्रकूट पहुंचने पर महाराज वशिष्ठ के पास में गए, महाराज आप गुरु हैं, आपकी आज्ञा का उल्लंघन राम नहीं कर सकते, इसलिए आप आदेश दीजिए कि आप लौट करके अयोध्या जाएं और राज्य काज संभालें, नहीं तो भरत जीवित नहीं रह सकता। नहीं तो बेटा मैं कैसे कर दूं, वो तो बड़ा भारी धार्मिक व्यक्ति है, पिता के वचन को सत्य करने के लिए जा रहे, मैं उसको कैसे कहूं अपने पिता के बात को उल्लंघन कर दो, मैं ऐसा नहीं कर सकता। तो फिर बहुत चेष्टा की, एक बात करो उसके बदले में तुम वन में चले जाओ, वो लौट जाए, ये तो मैं बहुत राजी हूं। अच्छा तो जाओ देखो, राम मानता है तो तुम जाओ। नहीं हुआ, आंख बंद मत करो, कोई आंख बंद मत करो, सुनो इसके लिए बुलाया है हमको, कोई भी मत सो। तो क्या कह रहा भरत जी, अब फिर गए उनके यहां कौशल्या माता के, मैया तेरी बात राम नहीं ठुकरा सकता, आप जाकर के उनसे कहिए अयोध्या चलना है चलो। उन्होंने कहा जी मैं कैसे कहूं, उसके पिता ने और मैया दोनों ने मिलकर के यह आदेश दिया है, मैं कैसे, मैं तो केवल माता हूं। और वो कैकेयी और माता और पिता महाराज दशरथ दोनों ने मिलकर के दिया है, मैं ऐसा नहीं कर सकता, क्यों मैया मैं झूठ, मैं गलती रास्ते पर हूं। मैं कह नहीं तुम ठीक हो, किंतु हमारा प्रेम उसके ऊपर में है, ये ठीक है, किंतु वो भी तो धर्म की रक्षा करने वाला है, सत्य को उसे कैसे वो हटे, मैं कैसे इसके लिए कह दूं। उन्होंने भी नहीं कहा। तो सीता जी की मैया सुनैना के पास में गए महाराज जनक कल सभा करेंगे और उसमें निर्णय करेंगे ये क्या होना चाहिए। सीता का दुख तुम देखना चाहती है, सीता बन बन में भटक रही है, कितना कष्ट पाएगी पा रही है। तुम हिमैया आप कह दीजिए महाराज जनक को, ये निर्णय दे कि राम अयोध्या को। उन्होंने कहा जा अच्छा मैं महाराज जनक से, वो हमारी बात मानेंगे कि नहीं मैं नहीं कर सकता, किंतु मैं उनसे कहूंगी। दूसरे दिन सभा हुई, वशिष्ठ महाराज ने कहा, वो ब्रह्म ऋषि हैं, उन्होंने कहा इस समय अयोध्या का राज्य या उसकी नाव डूब रही है, पानी में डगमगा रही, मैया को खेने वाला कोई नहीं है, इसलिए मैं सत्य और असत्य का निर्णय मैं भी नहीं कर सकता, क्योंकि बचपन से राम को हमने पाला पोसा है, उसको शिक्षा दी है, उसके प्रति मेरी ममता है, इसलिए मैं भी निर्णय नहीं दे सकता। हाँ महाराज जनक हैं, आए हैं, वो ब्रह्मर्षि, ब्रह्म को अनुभव करने वाले ऋषि हैं, संसार से परम विरक्त हैं, संसार में रहते हुए भी संसार में नहीं है, इसलिए मैं उनसे प्रार्थना करता हूं कि यह नाव डूबने से बचाए। यह सुन करके महाराज जनक अपने इष्ट देव को प्रणाम किया, उनका इष्ट देव माने गुरु शंकर जी हैं, उनको प्रणाम किया, ध्यान लगाया, आप तक प्रणाम करके बोले, यदि मैं अज्ञानी हूं तभी शंकर जी जो मुझसे बुलाएंगे मैं कहूंगा। और इसके बाद में बोले, देखो आप लोग सब सुनिए, एक तरफ में मैया बैठी थी, राजा अयोध्या के सब लोग पूर्वासी बैठे थे, दूसरी ओर सब सन्यासी ब्रह्मचारी और ऋषि मुनि बैठे थे, एक तरफ में राम बैठे थे, दूसरे तरफ में भरत बैठे थे, ऋषि महर्षि भी वहां पर थे। उस समय में महाराज जनक ने कहा, मैं सबको प्रणाम करके अपना अभिमत बतलाता हूं, भरत की जीत है, भरत जो चाहता है राम को करना होगा। क्या जीत हुई? भरत जो चाहता है उसको राम को करना चाहिए, क्यों? इसका प्रेम बहुत बड़ा है, अथाह समुद्र है, और प्रेम कोई नियम नियम नहीं जानता, प्रेम नदिया की बहे उल्टी धार, प्रेम नदिया की, कृष्ण टेढ़े हैं, उनकी नजरिया टेढ़ी है, उनकी मथुरा नगरी टेढ़ी है, वृंदावन टेढ़ी है, यमुना टेढ़ी है, उसकी बंसी भी टेढ़ी है, उसकी गोपियां तो और टेढ़ी हैं, ये प्रेम है ना, प्रेम की ऐसी वो रीति फीति नियम कानून की परवाह नहीं प्रेम करता है, प्रेम कहां लग जाए कोई ठीक नहीं। अरे काले कृष्ण के प्रति इतनी सुंदर गोपियों का प्रेम कैसे लग गया? तो ये प्रेम कुछ नहीं है, अथा ये अनंत है, किंतु राम का जो धर्म धर्म है उसकी सत्यवादिता है, वो कैसे हिमालय पहाड़ की तरफ, एवरेस्ट पहाड़ की तरफ अचल अटल है, भले ही पानी में डूब जाएगा किंतु टस से मस नहीं हिलेगा नहीं, ये राम के धर्म की ये सीमा है, वो धर्म की सीमा है, ये प्रेम की सीमा है, इसलिए वो डूब जाए किंतु वो भी तो हटेगा नहीं उधर, इसलिए भक्ति की प्रेम भक्ति में कोई नियम नहीं होने पर भी उसकी कोई एक नियम है, उसका क्या है? वो भक्तों को ये देखना चाहिए, भरत को ये देखना चाहिए जो राम क्या चाहता है, राम किस में प्रसन्न है, अयोध्या लौट जाने में राम प्रसन्न है या वनगमन में प्रसन्न है, इस चीज को देखे भरत। और पूछे जी भैया आप किस में प्रसन्न है और उसको सेवक का धर्म बहुत कठोर होता है, अपने समस्त बातों को विचारों को छोड़ करके अपने इष्ट देव की सेवा करनी होती है। इतना सुनते ही महाराज भरत राजा जनक के चरणों में गिर गए, यथार्थ आप मेरे गुरु हैं, अब तक मैं अपनी बात सोच रहा था, जो राम आने से मुझे खुशी होगी, सुखी होऊंगा मैं, किंतु मेरी भूल दूर हो गई, आंखें खुल गई, इसलिए इनके चरणों में कोटि कोटि बार दंडवत प्रणाम करता हूं। अब राम के पास में गए और उनको प्रणाम करके बोले, भाई आप क्या चाहते हैं, जो आप कहें खुशी हो वो मुझे करना चाहिए, तो इसमें क्या बात है। राम बोले, महाराज जनक ने तो कह दिया कि तुम्हारी जीत हो गई, तो तुम्हारी जीत है, मैं हार गया, मुझे अयोध्या लौट करके राज्य लेना है, तो मैंने राज्य लेना स्वीकार कर लिया, तो फिर हम ले आए हैं अभिषेक की वस्तुएं, जरा ठहर जाओ, जरा ठहरो, मैंने राज्य ले लिया, किंतु एक बात करो, जैसे मेरी भी मेरा भी धर्म राजा, तुम्हारा प्रेम भी राजा, और महाराज जनक की बात भी सत्य हो जाए, वो क्या मेरे प्रतिनिधि होकर अयोध्या में जाकर और तुम वहां का राज्य काज संभालो, ये मेरा आदेश है, मेरे प्रतिनिधि होकर के, राजा तो मैं हूं, राज्य स्वीकार कर लिया, किंतु पिताजी के वचन को रखने के लिए हम 14 वर्ष के बाद में एक सेकंड की देरी नहीं कर करके आ जाएंगे और राज्य ले लेंगे, तब तक तुम मेरे मंत्री प्रतिनिधि होकर के इसको संभालो। देखो पर जी उनका आदेश मान लिया, बोले जी अपने चरणों की खड़ाऊ दे दे दीजिए, और उन्हें अपने सिर पर लिया और नंदीग्राम में लौट करके अयोध्या नहीं गए, अयोध्या के पास ही 10-12 मील की दूरी पर चित्रकूट जैसा स्थान, वहीं पर गए और वहीं पर राम जैसे वन में जंगल में रहते हैं, वैसे वन जंगल में रहने के लिए गए, राज्य भोग करने के, और जैसे उन्होंने अपनी सब सब को छोड़ दिया था, ऐसे छोड़ करके फल मूल खाते थे, अपना केश बांध दिया, सवारना और काटना सपना ये सब दूर कर दिया केश, और राम की तरह में वनवासी बन करके दुख कष्ट के साथ में वहां पर रह करके उनकी खड़ाऊ को राज्य सिंहासन पर पधरा दिया, और राम जैसे उसकी सेवा करते उसका आदेश लेकर के राज्य का संचालन करते। यह है भक्ति, इसलिए अपने लिए मत करो, कृष्ण के लिए, और दिन रात वो भक्ति नैरंतर्यमयी हो, अपने लिए नहीं किसी कारण से हो, कृष्ण के लिए हो, तो वो यथार्थ भक्ति है, अन्यथा भक्ति नहीं है। कीर्तन कर दो, तो आप लोग भी कीर्तन करने वाली कोई है ना, आ जाओ आगे, आज ही तुम ही आज करो, कृष्णदास जी पीछे, और तुम भी अपना भजन कभी कभी सुनाना। ये सब गिर रहा है, ये किसके इतने सब है, घर घर रखी, ये सबके नत्र न तो एक पास एक खाने लाइन है, एकटा एक खाने था एकटा एक कल से बज गया, बतलाओ तो उन लोगों के लिए अंग्रेजी में दामोदर महाराज यू अंडरस्टूड समथिंग, नहीं आप बोलिए। संक्षेप नहीं बोलेंगे।
So, just up today, like, I am being asked to speak in brief. Srimad Bhagavatam is most focusing light on the definition of true bhakti. We have seen so many pastimes of Krishna in it, and so many pastimes of devotee. And before that, Shonak Rishi, etc., they are asking from Sudha Goswami, who was disciple of Sukadev Goswami, that when Kali is coming so fast, what is the way that we can protect ourselves? And Sukadev Goswami, or Sudha Goswami, he is saying, pure bhakti, pure devotional service is the only way. Now the question arises, what is pure bhakti? Pure bhakti is always misconceived. We think that whatever bhakti we are doing and performing, here and there is called bhakti. But it is hardly even shadow of pure bhakti. There are so many definitions of pure bhakti. According to Srimad Bhagavatam, this is to be done for Adhokshat, for Lord Krishna, who is beyond our senses, transcendental. And this bhakti should be causeless, perpetual, and without any material desire. Besides so many definitions, definition which is given by Srila Rupa Goswami, who was disciple of Chaitanya Mahaprabhu and who learned everything from Chaitanya Mahaprabhu, he has given a definition of pure bhakti which is unbeaten, unchallenged, matchless so far. This says, Anya Bhilachita Shunyam Jnan Karam Adiyanaditam Anukulen Krishna Anushilanam Bhakti Uttama. Uttam bhakti, the pure devotional service, means Krishna Anushilanam, by our all senses, by our mind, and by our all moods, when we are trying to please Krishna, then it is called pure bhakti. But still it is not pure bhakti. There is pre-required condition in it, that it should be anabhilashashunyam. There should not be any material desire. When we are going to perform, to please Krishna, there should not be any material desire. We go to Giraj Govardhan and do abhishek of 1 month or sava month milk. We want to offer it. Is it pure bhakti? No. We are not giving that milk to please Govardhan. We have got some our own material desire. We want to get fulfilled those desires. So this cannot be pure bhakti. What is pure bhakti? Pure bhakti, Dhruv Maharaj, he did bhakti. For in 6 months, by his bhakti, he pleased the Lord. But still it was not pure, because any bhakti, that is our endeavor to please Krishna, by our senses, by our mood, if it is for the purpose of some material gain, then it is not pure bhakti. Gurudev is saying that, in this regard, there is very, very vivid description which we will explain later on. But let us understand, try to understand, what does it mean by bhakti? When we say please Krishna, does not mean that there is a very interesting question raised by Gurudev in this regard, explaining the thing. That when Yashoda Maa is chastising Krishna, is going to beat him from a stick or saying, I will slap you, and Krishna starts weeping and crying, Ma, don't beat me. So mother is making Krishna weep and cry. Is she pleasing Krishna? If she is making Krishna weep, then that means her this act should not fall within the periphery of bhakti, pure bhakti. But no, it is not this. In fact, Mother Yashoda is not going to meet Krishna. From the core of her heart, she does not want to hit him, beat him, or does not want to inflict any pain to him. She wants that my child should not be spoiled. For his benefit, she is going to chastise him. Similarly, Charnur Musti in Mathura, on the order of Kans, they wanted to kill Krishna. And there is an arena, and fighting is going on, wrestling. And they are going to beat Krishna with their fists, whatever. And
they wanted to kill.
Very heavy fists, they wanted to kill Krishna. And Krishna today came in fearless mood. He is enjoying those fists. So when Krishna is enjoying it, is it bhakti by Charnur Musti? No. Gurudev is giving underline in this regard. That bhakti is not the gross thing. It is a very subtle thing. It lies within in a subtle form. What is that? That what is our desire for our subject? Are we doing for his benefit? Or we want to inflict something wrong to him? In this regard, Gurudev is giving a very nice example of Ramakatha. There was a very big assembly in Chitrakoot. Bharat went to take Ram back. And in that assembly, Raja King Janak was made judge. And Bharat said, that here is my humble submission. Why should Ram go to exile? He should come back to Ayodhya. He put forth all his dedicated desires to take Ram back. Gurudev explained it in very bit, but I have to tell in brief. Then Ram also put his own view that it is order of my father, I cannot disobey him. And then King Janak, he gave his order after remembering his Gurudev. His Gurudev is Shankar Bhagavan. He says that listening to both sides, I have come to this conclusion that bhakti of Bharat is so high, so high. And it is not high, it is deep like an ocean. And he wins because of his dedication. And at the same time, Ram, he is having his dharma. He is presenting his dharma, his maryada. It is like a mountain which cannot be displaced at all. But Bharat's love is like ocean. Though this ocean is so deep that it can make that mountain sink into that ocean. Mountain may sink but will not move at all. So, this is the conclusion, but one thing is there. Though love has crooked way, love is having crooked taste, but it has also some maryada, some regulation, some rule in it. And especially one rule. One rule rules this love. And what is this rule? That when we love someone, that our subject to whom we love, we should be focused on this point that what he wants. Our way of expressing our love to him should not be what we want from him. We should be totally dedicated to his desire. So Bharat should see what Ram wants, not only what he wants. And when he heard the definition of love, his eyes were opened. He went and he threw himself in front of Ram, said, oh brother, so far I was thinking that my bhakti and love is in this fact that I should bring back to you Ayodhya. I was trying to do it for my own happiness, for my own benefit. I never thought that, what do you want? Now I surrender to you. Tell me what do you want. And Ram said, oh Bharat, you won. You won the game. So I accept the kingdom back. But when you say that, what should I do? Then listen one thing. I have to fulfill the promise which I have given to my father. Wow. So I will go to exile for 14 years. But I will rule Ayodhya, you will be my governor. Take it. And I will come after 14 years and will take back my kingdom. And Bharat said, please don't be late even for one day. Bharat went back, taking kharang of Lord Ram. He put those kharang on Raj Singhasan. He never sat on it. Rather, he went to a Nandigram nearby a place and started living a life like a hermit, as Lord Ram was living a Vanvasi life. He bound his hair without decorating himself, and he was living like an exile life. So this is the definition of love, which we should understand from the from Srimad Bhagavatam. I think this is the gist.
Thank you. Very good. आरती कर दो,
अच्छा कीर्तन कर दो और आरती लाओ
जल्दी से कट कर।
अब कल से फिर आज यहीं पर कथा विश्राम करें। आरती है।